نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بڑے پیار سے درود شریف پڑھے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ہر خیال کو نکال دے, وسوسے بھی نکل جائیں, سوالات بھی نکل جائیں اور میں صرف اور صرف اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کر سکوں اور آج کے سبق سے شاید میری زندگی کا وہ حصہ منسلک ہو کہ جو میرے لیے اللہ کے معاملوں کو سمجھنا اور اللہ کے دین کی حکمتوں کو سمجھنا آسان کر دے. کیونکہ پہلی ہی آیت میں ہم بہت ہی خوبصورت بات کرنے والے ہیں اور آیت ہے 40. ہم نے پیچھے آیت 39 سے چھوڑا تھا, آئیے آگے دیکھتے ہیں. آگے دیکھنے سے پہلے پیچھے دیکھ لیا ہم نے کہ وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انکار کیا. لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا جاتا تو تکبر کرتے, پھر ان کی زبانیں بولتی تھی کہ کیا نعوذ باللہ ایک شاعر مجنو کے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں, خاندانی روایات چھوڑ دیں, باپ دادا کے طور طریقے چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بل جا بالحق وصدق المرسلین, یہ جو مرضی کہتے رہے, اصل بات یہ ہے کہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں کی. تو ایسے ظالموں کا انجام کیا ہے, انکم لذائق العذاب الالیم, یہ تو چکھنے والے ہیں دردناک عذاب کو. اور کوئی ظلم نہیں کیا ہم نے آپ پہ, وما تجزون الا ما کنتم تعملون, یہ تمہارے کیے کرائے کا بدلہ ہے, یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا اور جزا ہے, کچھ اس کے علاوہ نہیں. ہاں مگر اب ایک اور کردار, آیت 40, الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. یہ ہے کلائمیکس اس صورت کا. آپ ادھر ایک باؤنڈری وال بنا سکتے ہیں, ایک لائن لگا سکتے ہیں. پچھلی صورت میں جو تذکرے تھے وہ تو مشرکوں کے تھے اور انہوں نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کیا اس کی باتیں تھیں, لیکن یہاں سے آگے صورت کے خاتمے تک اللہ تعالیٰ چنے ہوئے بندوں کی باتیں بتاتے ہیں. پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخلص کون ہوتا ہے. پیچھے بھی بات ہوئی لیکن کوئی بات نہیں, یہ بات تو بار بار کریں تو بھی بھولتی ہے, عمل میں تو بہت ہی بھول جاتی ہے, تو دہرا دیتی ہوں. لفظ مخلص خ لام سواد سے ہے, اسی سے لفظ خلصا, خلوص, مخلص, خالص کرنا ہے. اگر آپ لکھ کے دیکھیے مخلص اور مخلص دونوں کو لکھ لیں الگ الگ, مخلص مفعل کا وزن ہے جو کہ بتائیے, شابش جی, مفعول کا وزن ہوتا ہے وہ شخص جو کوئی کام, سوری, مخلص کیا ہے, جس پر کوئی کام کیا جائے, اور مخلص تو یہ کون سا وزن ہوگا, مفعل, فاعل کا وزن ہوتا ہے عربی زبان میں, ٹھیک ہے. تو گویا کہ مخلص کون ہے جو ابھی خالص ہونے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. امیجن کریں, صاف کر رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, برتن صاف ہی نہیں ہو رہا, پھر آپ اور رگڑتے ہیں, پھر کہتے ہیں تھوڑا اس کے اوپر سٹیل وول لگا دوں, تھوڑا وم ڈال دوں, تو آپ کی یہ کوششیں آپ کو اور سے اور چمکا رہی ہیں. لیکن ایک دم آپ کہتے ہیں ہو گیا, صاف ہو گیا برتن, تو پھر آپ مخلص سے مخلص ہو گئے. بہت بڑی بات ہے. ہم عموماً کہتے ہیں مخلص بنو, مخلص بنو, تو مجھے آپ بتائیے کہ مخلص, مخلص بڑی بات ہے, مخلص بڑی چیز ہے یا مخلص بڑی چیز ہے؟ مخلص بڑی چیز ہے. مخلص وہ ہے جو کیپ سٹرگلنگ, ابھی اخلاص کی کوششوں میں ہے, ابھی دل کے برتن کو صاف کرنے کی کوششوں میں ہے, ابھی دل میں جو کھوٹ کھپٹ ہے ان کو نکال رہا ہے. اور یاد رکھیے ساری زندگی بندہ مخلص بنتے کی کوششیں کرتا ہے اور آخر میں مخلص بن جاتا ہے, اور اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, کہ چل میرے خالص, میرے چنے ہوئے بندے, اب تجھے میں لے کے جانے کو تیار ہوں. تو یہاں آپ دیکھیے انبیاء کرام کے تذکروں سے پہلے مخلص کا لفظ کر کے بتا دیا, ساری زندگی کے مجاہدوں, رب کی اطاعت کو, رب کی بات پہ سمینا واتانا کہنے کو, اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین کی صورت میں, یا وإذ ابتلى ابراہیم ربه کی صورت میں, یہ لوگ مخلص بن گئے. چپکے سے اپنے لیے دعا کریں, اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی مخلص بنا دے. بہت تھک گئے ہیں دو رنگی چال سے, हमने जिंदगी का भी असल मजा भी नहीं लिया, क्योंकि कभी गर्म होते हैं फिर ठंडे हो जाते हैं, कभी दीन की गर्मी आती है तो फिर एकदम ऐसी ठंडक आती, कई के दिन तक ईमान की हरारत ही नहीं महसूस करते अपने दिल में, और इस तरह करते कराते हम गरम ठंडे ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई की कैफियत में आ जाते हैं। मजहब जबी न बई न सालिका, कभी इधर के कभी उधर के, तो आपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे मुखलस कर दे। मैं जब लफ्ज़ मुखलस कहती हूँ ना, तो मेरे जहन में पता क्या आता है, कभी आपने भी ड्रामों में या हॉस्पिटल में देखा होगा, किसी की हार्ट बीट काउंट करती हुई दिखाते हैं ना, ऊपर नीचे तेजी से, फिर एकदम सीधी कर देते हैं। लोग कहते हैं इसकी डेथ हो गई, मैं कहती हूँ ये बंदा मुखलस बन गया। एक ईमान वाला सारी जिंदगी इसी जिद्दोजहद में रहता है, अभी ये धब्बा पड़ा हुआ इसको उतारना है, अभी ये धब्बा उतारना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, इधर से साफ किया, वो खत्म, वो किया। आप अपने घर को भी तो मुखलस करते रहते हैं ना हर वक्त, रेनोवेटेड हर वक्त, बस ये कर लूं फिर ठीक है, ये कोना साफ हो गया ये ठीक। जब सारा घर साफ होता है, उतने में दूसरी तरफ का कोना फिर खराब हो चुका होता है। एक पकाते, एक खिलाते, एक संभालते, सारी जिंदगी इन्हीं कोशिशों में गुजर जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि बंदे की रूह को करार आ जाता है उस दिन जब वो मुखलस बन जाता है, और अल्लाह मुझे और आपको मुखलस बना दे। क्या होगा इन मुखलसीन के लिए, ये अल्लाह के चुने हुए बंदे जो हैं, जिनको अल्लाह ने खुद चुन लिया। और लफ्ज़ देखिए इबाद है, अब्द से नास नहीं कहा, पहले अब्दियत आती है, पहले बंदगी का रंग आता है, फिर इंसान के ऊपर इखलास का रंग चढ़ता है। पहला मरहला बंदा बनने का होता है, फिर मुखलस बनते हैं। या एक छोटा सा नुक्ता फिर दिल में अल्लाह ने डाल दिया, उसको भी समझ लीजिए। हम कहते हैं हम तो बड़ी बड़ी नेकियां करेंगे, भाई उठो नमाज पढ़ो, नहीं नहीं मैं तो मक्के में जाके पढ़ूंगी बस, अब तो जाना ही है वहां जाके ही पढ़ लेंगे। अच्छा भी रोजे रखो, नहीं मैं तो बस अब रमजान से पहले खूब मस्तियां कर लूं, बाद में रखूंगा, फिर सारे गुनाह रमजान में तो छोड़ने, और छोटी छोटी नेकियां छोड़ देते हैं, और फिर बड़े मौके आएंगे कोई नहीं, फिर बड़े मौके हमारी जिंदगी में नहीं आते तो मजरतें भरते हैं, रोते हैं, हाय हमारे गुना, हाय हमारा नसीब कोटा, हाय हम ऐसे, हाय हम क्यों जलते हैं, हम क्यों दुखते हैं। तो याद रखिए, लिख लें, बड़ा बड़ा करके लिख लें अपने नोट्स पे, ना लिखें बेशक दिल की तख्ती पे लिख लें, जब आप नेकी के छोटे छोटे मौकों को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहकर पुकारते हैं ना, जी ये नेकी है मैं करूंगी, अच्छा ये मौका आ गया मैं हाथ डालूंगी, मैं इसमें वॉलंटियर करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मेरा नाम लिखिए, मुझे जल्दी से डाल दे, देखिए पहले मुझे बताइएगा फिर किसी को बताइएगा, देखिए जब मैं ना कर सकूं फिर किसी को दे। आप इस तरह करते करते इबाद अल्लाह में शामिल हो जाए, अबदियत बन जाए, आपके अबदियत का रंग आ जाए, आमतुल्लाह बन जाए। जब ये कर लेंगे तो वल्लाही अल्लाह आपके रास्तों में यूं मुखलस बनने के मौके लाएगा कि आपको हैरत होगी कि इतने तो जज्बे सच्चे नहीं है, इतनी तो कोई मेरे अंदर तड़प नहीं है, ये अल्लाह मेरे ऊपर इतने इनाम क्यों कर रहा है। तो छोटी नेकियों की कदर करने वालों को बड़ी बड़ी नेकियों के मौके मिलते हैं, और छोटी नेकियां बल्कि बड़ी बड़ी नेकियों को छोटा छोटा समझ कर ज़ाया करने वाले फिर मुखलस नहीं हो पाते, फिर वो असाबिकून अलवलून में नहीं जा सकेंगे, फिर वो बस वही है असहाबल यमीन, और अल्लाह उनको मुझे कहीं ना कहीं जन्नत में खपा दे, इतना ही बहुत है। तो जन्नत के ग्रेड्स लेने हैं तो क्या होगा, मुखलस बनना पड़ेगा, क्या मिलेगा अब ज़रा इमेजिन करें, खुद को जन्नत में ले जाइए, रूह तो जिस्म से निकल गई इत्मीनान की हालत में, अब अल्लाह चुनने वालों को क्या खुशखबरियाँ देता है। उलाइका लहुम रिज़्कुम मालूम, यही वो लोग हैं जिनके लिए तयशुदा रिज्क है, अल्लाह को पहले से मालूम है। अब रिज़्कुम मालूम से क्या मतलब है, इनको मालूम है। अच्छा पाकिस्तान में थे दाल चावल खाते थे तो ईद जन्नत में भी गए तो वहां भी दाल चावल थी, ये मालूम है, ये मालूम नहीं है, अल्लाह को मालूम है। अब इसकी कई तफसीरें हैं, लेकिन मेरा इन आयतों पर आके दिल चाहते बस मैं आयतें पढ़ती जाऊं, मैं इधर उधर ज्यादा बात ना फैलाऊं। क्यों, कि रिज़्कुम मालूम से कुछ भी हो, हमें इतना पता है कि अल्लाह सुबहान तआला ने जन्नतियों का रिस्क मालूम किया हुआ है, उनको भी पता है, पीछे हम पढ़ चुके, जब कभी उनको वहां रिस्क दिया जाएगा, कुल्लमा, जब कभी वहां रिस्क दिया जाए क्या कहेंगे, ये तुम्हें पहले भी दिया गया था। और इनके आमाल से मिलता जुलता रिस्क होगा मालूम में ये बात भी आती है, इनको खुद पता है अपनी जिंदगी में कि हमें वहां कौन से दर्जे का खाना मिलने वाला है, हमने किस दर्जे की बुकिंग यहां करवाई है, वहां असहाबुल यमीन में नाम लिखवाया हुआ है या हमने मुकर्रबून में लिखवाया हुआ है, इनको पहले पता है। हर इंसान को पता है वो कहाँ खड़ा है, सूरत क़यामत में आप पढ़ेंगे बलिल इंसान वला नफ्सी ही बसीरा वलौ अल्क़ा माज़ीरा। इंसान दूसरों से छुप सकता है, खुद से नहीं छुपता, तो इनको अपना रिस्क पता है। और सच्ची बात बताई, एक समझदार तालिब इल्म पेपर देकर आए, पूछो कैसा रहा, कितने नंबर आएंगे, मालूम होता है कि नहीं? मालूम होता है। वो ये नहीं कहता कि पता नहीं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, नहीं, सब मालूम है। तो हर बंदा अपने अंदर को जानता है, जितनी तड़प, जितनी तलब, जितनी मुश्किल हालात में से नेकी की, जितना कोई नहीं कर रहा था तो आपने कर ली, कितना था जिस वक्त आम दिन थे उन दिनों में तो नेकियों में भाग दौड़ती, फिर नेकी हाथ से नहीं होती, दिल दिमाग भी उधर है, सोच कहीं और जा सकती है, नहीं जाने देनी, मुझे अपने रब की बात को सीखना है, मुझे सिखाना है। हर वक्त हम देखे इन इम्तिहानों से नहीं गुजरते, हमारी सोच भटक जाती है। जरा चार मेहमान वीकेंड पे हमारे घर आने वाले हों, पूरा वीक हमारी सोच भटकी रहती है, ये बनाऊंगी, ये करूंगी, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सही करना है, वो भी सही करना है। ऐसे लम्हों में जब इंसान अपनी सोच को भी शिरक में ना डाले, तो अल्लाह ताला फिर उसको बता देता है दुनिया में कि आज की इस नेकी का बहुत ही अजर मिलना है मुझे। रोज आने का अजर मिलता है, रोज आने का अजर मिलता है, लेकिन जो आज आने का अजर है ना, ये मुझे पता है कि मुझे बचा देगा इंशाल्लाह। रिस्क मालूम, और रिस्क का ताल्लुक सिर्फ खाने पीने रोटी कपड़े से नहीं है, रिस्क तो मोहब्बत का रिस्क भी है, शायद अल्लाह के दीदार का रिस्क हो, चाहे शायद वहां अल्लाह ताला हमसे पता नहीं किन किन चीजों का रिस्क हमें दिखा दे, हमने तो सोच भी नहीं, हमने तो सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। फवाकिहु वहुम मुकरमून, हर तरह के मेवे, और वो बाइज्जत तो इकराम होंगे। देखिए जब रिस्क कह दिया तो फवाकिहा की क्या जरूरत थी, फाकिहत उनकी जमा मेवे, यहां बता दिया कि उस रिस्क में सिर्फ मेवे नहीं है और बहुत कुछ है, हाँ फल भी होंगे, और ऐसे ही नहीं लाके पटख दिए जाएंगे सामने, स्माइली फेसेस के साथ, इज्जत के साथ तुम्हें पेश किया जाएगा। मुकरमून, किसी को खिलाना या कुछ देना ये एक चीज है, और उसके सामने पेश करने का अंदाज कैसा होता है। मैं अक्सर इस चीज को फील करती हूँ, मुख्तलिफ लोग बस दफा आपके सामने खाना रखते हैं ना, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि लोगों का चेहरा, उनके हाथ, उनका पोस्चर बिल्कुल इस बात की गवाही नहीं दे रहा होता कि वो खुशी के साथ कर रहे हैं कि नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके चलने, उनके फिरने, उनके बात करने रखने के अंदाज से पता चलता है कि ये आपको इज्जत दे रहे हैं। और इस पे सिर्फ एक ही मिसाल है दुनिया में, बात सिर्फ समझाने के लिए, एयर होस्टेस, आप पानी का ग्लास मांगे, वो लाके यूं पटके आपके आगे, थोड़ा सा नीचे ही गिर जाए, ना स्माइल देखे कहीं और चीज आपके आगे रख के भाग जाए। उनको दुनिया के चार लोग घंटे की फ्लाइट के लिए इतनी ट्रेनिंग दी जाए, तो दुनिया में इंसान जब रहे तो उसको कितना अच्छा अखलाक होना चाहिए। तो याद रखिए आप और मैं सब, अब हम दीन के दाई हैं, हमारे चेहरों पे दीन लिखा हुआ है, लोग हमारी किताबों के नोट्स नहीं पढ़ेंगे, हमारे चेहरे, हमारे मोहरे चलने फिरने को देखेंगे, तो जन्नतियों को अल्लाह वहाँ इज्जत से पेश करेगा। फी जन्नत नईम, नेमतों वाली जन्नत में बैठे होंगे, अला सुरूर मुतकाबिलीन, तख्तों पर एक दूसरे के आमने सामने, सुरूर सरीरत उनकी जमा, शरीर छप्पर खट को कहते हैं, ये छोटी सी चारपाई नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी कौचीज होती थी पहले दौर में बादशाहों के लिए, कुजी सी, और उसके चारों तरफ फिर कहीं कर्टन और कहीं फूलों की झारियां। आज ज्यादा ज्यादा ये कह लें कि अब दुल्हन की मसहरी, उन मसहरियों पे बिठाए जाएंगे, और मुतकाबिलीन, मुतकाबिल की जमा, दिलों में चूके बुगज कोई नहीं तो आमने सामने बैठने में बुरा क्या, सबसे खूबसूरत नशिस्त आमने सामने की होती, दोस्त के सामने बैठे, शौहर के साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे, पहले देखे बैठी कहां। कम्युनिकेशन का बेस्ट स्किल है कि पहले किसी को बिल्कुल अपने सामने बिठाएं, उसको समझाएं, प्यार से तरीके से बात करें, कोई इधर है और आपका मुंह उधर और आप बड़बड़ बोलती जा रही हैं, वो पीछे हो सकता है आपके लिए फेसेस बना रहा हो, नहीं सामने, और सामने बंदा बैठता ही उसके जिसके लिए दिल में मोहब्बत होती है। जन्नतों में दिलों में बुगज और कीने नहीं होंगे, इसलिए सामने आमने होंगे। युताफ अलैहिम बिकास मिन माईन, और फिराए जाएंगे वहां बिकास कौन से, जारी शराब के जाम का, इन पर दौर चल रहा होगा। बस इस पे तो सब परेशान हो जाएंगे, अभी हाय हाय इतनी अच्छी जन्नत और वहां शराब का जाम होगा, नहीं फिक्र नहीं करे, अभी देखते हैं। बेईदा, काली क्या गंदी नहीं होगी, चमकती हुई सफेद, क्रिस्टल क्लियर, गंदी बदबूदार नहीं, लज्जतिन, लजीज, टेस्टी, किसके लिए, लिशारिबीन, पीने वालों के लिए। और शराब के जो सीक्वेंसेस हैं वो कुछ भी नहीं, ला फीहा गौलुन, ना इसमें इससे दर्द सर होगा, वला हुमन हा युनजफून, اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، سر نہیں دھنکیں گے، وہ ساری خرابیاں جو شراب پی کر ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گی۔ تو جب شراب ہے تو شباب بھی ہوگا۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفَيْنِ، اور ان کے پاس نظریں جھکائی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گندی فلرٹی عورتیں نہیں ہوں گی، فلرٹ زون نہیں ہے وہ۔ دنیا میں شراب بھی گندی اور اس کے بعد جن لوگوں سے تعلقات ہیں وہ بھی گندے۔ وہاں کے نظریں جھکائی میں قاصرات، وہ عورت جس نے نظریں جھکائی ہوں، قصر سے ہے، نماز بھی کرتے ہیں نا قصر، چھوٹی کرنا، جھکا لینا، تو نظریں جھکانی، طرف کنارے، عین آنکھوں کے، یعنی وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے بڑی بڑی اپنی آنکھوں کو جھکا کے بیٹھی ہوں گی۔ کأنہن بيض مكنون، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے، انڈے کو چھپا دیں، کھولائیں، جیسے لمبوتری سی آنکھ ہوتی ہے نا، اوول، بیضوی آنکھ۔ اور انڈا کیوں؟ کیونکہ ان کی جو باہر کی جھلی ہے نا وہ انڈے کی طرح سفید ہوگی۔ خوبصورت آنکھ ہوتی ہے جس کی باہر کا حصہ سفید اور اندر کا حصہ کالا ہو۔ آپ ذرا سوچیے، امیجن تو کریں ان سب چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن چیزوں کو ریسٹرکٹڈ کر دیا، وہاں اللہ نے انہی کو اوپن کر دیا۔ تھوڑا سا صبر ہے بس، حرام سے بچ کے حلال سے خواہشیں پوری کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ عذاب سے محفوظ، کوتاہیوں سے درگزر، کوئی گناہ تھے بھی تو ان کو معاف کر کے ایک ایک نیکی کا کئی گنا اجر دے دیا، اور اب وہ سب دے دیا جو دنیا میں کوئی فلرٹی انسان اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہوئے دنیا میں تھا، وہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو دے گا۔ کاس کہتے ہیں شراب کے بھرے ہوئے جام کو، بھر جائے تو کاس ہے، اور خالی جام ہو تو اس کو قدخ کہتے ہیں، قدخ۔ اور معین کہتے ہیں جاری چشمے کو، آن عین چشمہ ہوتا ہے، تو معین جاری چشمہ، یعنی وہاں کی شراب بھٹیوں میں نہیں بنے گی، لاتوں کے ساتھ اور پاؤں کے ساتھ مسل کے انگوروں سے وہ شرابیں نہیں بنائیں گے، بلکہ چشمے ہوں گے، جاری چشمے۔ اور آپ کو تو فلوئنگ جو اسپرنگ ہوتا ہے وہ تو ویسے پاک ہوتا ہے اور ہر وقت موجود ہوگی۔ دنیا کی شراب عام طور پہ بد رنگ ہوتی ہے، وہ لذیذ ہوگی، خوش رنگ ہوگی۔ دنیا کی شراب پیے کوئی تو اسے قے، وومٹ، سر درد، بدمستی، بہکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کی عورتیں آنکھیں کھول کے پٹر پٹر دیکھنے والی ہوتی ہیں، وہاں کی عورتیں آنکھیں جھکائے ہوئے بیٹھی ہوں گی، شتر مرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں، جس طرح جن کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد و غبار سے محفوظ ہوں۔ دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ شتر مرغ کے انڈے بہت خوبصورت رنگ کے ہوتے ہیں، خوش رنگ ہوتے ہیں، زردی مائل سفید ہوتے ہیں، اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل سفید رنگ بھی نہیں اٹریکٹو لگتا نا، ہلکی سی پلاہٹ ہو، سنہرا پن، اس لیے یہ تشبیہ دی گئی کہ یہ صرف سفید نہیں ہے بلکہ خوش رنگ ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ کیا ہمیں اس جنت کو پانے کی کچھ خواہش رکھنی چاہیے؟ کیا ہم اس کے لیے کچھ تیاریاں کر پائیں؟ ہے کوئی خواہش؟ خواہشیں تو بہت ہیں ماشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے جنت صرف خواہشوں پہ نہیں ملتی، اور جنت صرف دعاؤں سے بھی نہیں ملتی، جنت عمل سے ملتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میں اور آپ اگر جنت کو پانے کی کوششیں کر لیں، کتنے دن کریں گے؟ اپنی زندگی دیکھ لیں، اب آگے رہ کتنی گئی ہے، ہم میں سے تو کسی کو کچھ نہیں پتا، آدھی تو گزار ہی چکے ہیں نا، اور اگر وہ بھی جب اللہ ہمیں پوری عمر دے دے، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اور نہیں گزاری تو کوئی بات نہیں، وقت گزرتے پتہ کہاں چلتا ہے۔ 2014 سے 15 ہو گیا، آپ کو پتا چلا؟ بالکل بھی نہیں پتا چلا۔ اور 10 آیتوں میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی یہ خوبیاں بیان کر دی ہیں۔ ایسے لوگ پھر وہاں کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ بعض کہتے ہیں رزق و معلوم سے یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے وقت معین ہوں گے، صبح و شام باقاعدگی سے دیا جائے گا، گیپ نہیں ہوگا۔ ایک جگہ ہم اور پڑھتے ہیں بکرتم و عشیہ، صبح و شام ہے۔ اسی طرح رزق و معلوم سے کہتے ہیں وہ دائمی اور یقینی رزق ہوگا، دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اگلے سالوں میں میرے پاس کتنا رزق ہوگا، چلتی ہوئی فیکٹری بند ہو جائے یا ریڑھی کو اللہ تعالیٰ کسی شاپ میں بدل دے۔ دنیا میں ہر وقت لوگوں کو دھڑکا رہتا ہے، جاب نہ چلی جائے، یہ نہ ہو جائے، آج جو نعمت میرے ہاتھ میں کل کسی اور کے پاس چلی جائے، جنت میں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو ان سب چیزوں کو دیتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے فواقح کے بارے میں بھی کچھ مفسرین کی باتیں سن لیجئے۔ میوہ کہتے ہیں نا، एक होता है समरा, समर से सा, और एक होता है फवाकेहा। समर मेहनत का भी होता है, लेकिन फाकेहा फ्रूट्स के मानों में होता है। हर वो चीज जो भूख की जरूरत रफा करने के लिए नहीं बल्कि लज्जत हासिल करने के लिए खाई जाए। आपने भी देखा होगा हम पाकिस्तानियों का तो अजीब ही हाल है, फ्रूट खा लें तो भूख कोई नहीं खत्म होती और लग जाती है। आप कभी खाली पेट सेब तो खा के देखें, 10 मिनट बाद अंदर से ऐसी खिंच पड़ेगी कि लगेगा दिल डूब रहा है। फ्रूट से भूख नहीं खत्म होती, सिर्फ लज्जत मिलती है। और जन्नत में खाने भूख के लिए नहीं है, लज्जत के लिए है। और इसके बहुत सारे मानी हैं। इमाम राजी कहते हैं कि इसी फवाकेहा के लफ्ज से ये नुक्ता निकलता है कि जन्नत में जितनी गजाएं दी जाएंगी वो सब लज्जत बख्शने के लिए दी जाएंगी, भूख की हाजत दूर करने के लिए नहीं। इसलिए कि जन्नत में इंसान को किसी चीज की हाजत नहीं होगी, वहां उसको अपनी जिंदगी बरकरार रखने के लिए नहीं खाना, और ना हिफ्जाने सेहत के लिए खाना है कि ना खाया तो ये डेफिशिएंसी होगी और कैल्शियम कम हो जाएगा और पोटाशियम नहीं रहेगा जिस समय। वहां सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश के लिए खाएंगे। लहुम फीहा मा यश्तहून। दुनिया में भी हम जो जिसको हम कहते हैं ना ऐसे ही चस्का लगाना, क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं ना, स्नैकिंग, हर वक्त कभी चिप्स का बैग खोल लिया, कभी कुकीज खोल ली, कभी कुछ खोल ली, यही हालात वहां दिखते हैं कैसे होंगे। लज्जत ही लज्जत, मुकरमून, मेहमान को पूरी इज्जत दी जाएगी। आप देखिए मेहमान की इज्जत ना की जाए ना तो लजीज से लजीज चीज की मिठास और उसका टेस्ट भी खत्म हो जाता है। वो कहते मैं आपके खाने का भूखा नहीं हूं, मेरे से बात करें अच्छी तरह। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह आप देखिए अला सुरूर मुतकाबिलीन को अपने जहन में लाएं, किसी की तरफ पुश्त नहीं होगी, कैसे ये तो अल्लाह ही जानता है। बस कहते हैं कि मजलिसों के दायरे इतने वसी होंगे कि किसी को किसी की तरफ पुश्त करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यानी बड़ा सा सर्कल लगाए ना, जैसे अब आप सबको कहा जाए कि आप सब बड़ा सा एक साइकिल बनाए तो बहुत जगह चाहिए होगी ना आपको, लेकिन अल्लाह ताला उनको बड़े से दायरे में बिठाएगा और अल्लाह ताला अहले जन्नत को देखने की, सुनने की और बोलने की वो ताकत देगा कि दूर बैठे हुए लोग भी बड़े आराम से बातें कर सकेंगे। जी नो माइक, कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं, बड़ी स्क्रीन के अब पीछे वालों को तो नजर ही नहीं आ रहा। बास कहते हैं कि ये तक घूमने वाले होंगे, जिससे बात करनी होगी उसी की तरफ घूम जाएंगे, हम क्या जाने, जब जाएंगे तो देखेंगे। लज्जत लिशारबीन, असल में लफ्ज लज्जा है इसके अंदर, लजीज होना, जाती लज्जा भी कहते हैं, यानी ये जाती लज्जत इन मुराद है, लज्जत वाली चीज जो भी है बस ये देखे कि होगी लजीज। लाफीखा गौलन, गौल कहते हैं सर के दर्द को भी, और कोई कहता है कि पेट का दर्द, और इसकी तीसरी तफसीर बदबू और गंदगी, चौथी तफसीर अकल का बहक जाना, और ये सारे मानी गौल के लफ्ज में आते हैं। एक और मानी इमाम इब्ने जरीर कहते हैं गौल से मुराद आफत है, आफत क्लेमिटी, यानी जन्नत की शराब में ऐसी कोई आफत नहीं होगी जो दुनिया की शराबों में होती है। अब आप देखिए कासिरातु तरफ पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। जन्नत की हुरूत की सिफात, निगाहें नीचे रखने वाली, मुराद यह कि जिन शोहरों के साथ इनका इज्वाजी ताल्लुक अल्लाह ने कायम किया वो फिर इनके अलावा किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगी। जी इमाम जोजी कहते हैं कि ये औरतें अपने शोहरों से कहेंगी मेरे परवरदिगार की इज्जत की कसम जन्नत में मुझे तुमसे बेहतर कोई नजर नहीं आता, जिस अल्लाह ने मुझे तुम्हारी बीवी और तुम्हें मेरा शोहर बनाया तमाम तारीफें उसी के लिए। यानी नजरों से नीचा रखने से मुराद दूसरे मर्दों से बहुत बेतकल्लुफ होकर बात नहीं करती। इसी तरह एक और बहुत ही यूनिक मानी भी इमाम इब्ने जौजी ने लिखा, कहते हैं कि अपने शोहरों की नजरें नीची रखेंगी, यानी वो खुद इतनी खूबसूरत और वफाशार होंगी कि इनके शोहरों को किसी और तरफ नजर उठाने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। दुनिया में अल्लाह ये किसी औरत को एजाज दे दे कि उसका मर्द कहे कि मुझे तुमसे ज्यादा तो कोई हसीन लगती नहीं है, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी और को क्या देखना। मेरे लिए अक्सर औरतें इसी जुमले को सुनने को तरसती होंगी ना, लेकिन जन्नत में जाकर ये ख्वाहिशें सब की पूरी हो जाएंगी। फिर मर्द ना तस्वीरें देखेंगे, ना गंदी पिक्चर्स देखेंगे, ना रातों को छुपकर कुछ देखेंगे। उनको पता है मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत औरत कोई नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और वो छुपी हुई है पर्दों में। इस तरह से ऐसे लोग फिर वहां जाकर आएंगे। अब ये सारा मंजर जहन में रखिए जितनी बातें भी हैं, और उसके बाद अब अगली आयतों में एक मुकालमा है, बहुत दिल को छूने वाला। और आप देख रहे हैं कि सूरत सवाफात के अंदर बहुत ज़्यादा पिक्चराइजेशन है। ऐसे लगता है कि जैसे हम अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहे हैं। इमेजिन करें, दुनिया में कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता जुलता था। पहले हम उन आयतों को एक साथ पढ़ लेते जहाँ तक वो हैं, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम इनको, इसके पीछे एक आधा वाक्य आता है। वाक्य इतने अहम नहीं होते, यानी ख़ास तौर पे जो आयतों के साथ आते हैं कि भाई ये उस मौके पे उतरी, क्योंकि मैं और आप इस वक्त कोई तारीखी सबक तो नहीं पढ़ रहे ना, हम तो अपने लिए पढ़ रहे हैं। और इसीलिए इंशाअल्लाह फिर हम जब इनको पढ़ेंगे तो हमें इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक छोटी दो बात और है इसमें, जो शराब की बात हुई, सूरत मोहम्मद में हम पढ़ेंगे जन्नत में नहर भी होगी शराब की। वनहार मिन खमर लज्जत लिश्शारबीन के लफ्ज़ आते हैं कि जन्नत में शराब की वो नहरें हैं जो बहुत लज्जत वाली होंगी पीने वालों के लिए। फिर इसी तरह ये जो कहा गया कि शराब पिलाई जाएगी, तो यहाँ ये तो नहीं पता चल रहा कि कौन पिलाएगा, लेकिन कुरान पाक में इसका जिक्र हम मिलता है। जैसे सूरत तूर आयत 24 में आता है, वयतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लूलूअ मंसूरा, और इनकी खिदमत के लिए गर्दिश करेंगे ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही होंगे, तुम उन्हें देखो तो ऐसे समझो जैसे मोती है बखेर दी गई। ये सूरत दहर थी, सॉरी ये जो अभी बताया ये सूरत दहर की आयत है। बहुत हसीन, बाज़ लोग कहते हैं मुशरिकों के बच्चे होंगे जो बचपन में फौत हो गए। इसी तरह सूरत तूर आयत 24 में आता है, वयतूफ़ु अलैहिम गिलमानुल्लहुम कान्नहुम लूलूअ मकनून, इनकी खिदमत के लिए गर्दिश करेंगे इनके खादिम लड़के ऐसे खूबसूरत जैसे सदफ़ में छुपे हुए मोती। अल्लाह अकबर, क्या वो वक्त होगा। और रिवायत भी लिख लीजिए हज़रत अनस से सुमरा, हज़रत अनस और हज़रत सुमरा से, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुशरिकीन के बच्चे अहले जन्नत के खादिम होंगे। अबू दाऊद और तबरानी और बज़ार की रिवायत है। सही सनद को इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये रिवायत मिलती है। और रिवायत में ये मिलता है कि जो बच्चे सन रुश्त को पहुँचने से पहले मर जाते हैं वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर बच्चा फितरत पर होता है। और जिन बच्चों के वालदैन जन्नती होंगे तो वो वहाँ अपने माँ बाप के साथ रहेंगे ताकि माँ बाप की आंखें ठंडी हों। पीछे वो लोग रह जाते हैं जिनके माँ बाप जन्नती ना हों, तो उनको रिवायत में आता है कि वो अहले जन्नत के खादिम होंगे। अल्लाह नोस दिवर्स फतुल बारी और उमदतुल कारी में आप पढ़ सकते हैं, ये बुखारी की तफसीर है, शुरूहत हैं, जिसके अंदर फिर इन रिवायत को मजीद देखा जाता है। अल्लाह ताला हमारे लिए इन सारी बातों को समझना आसान कर दें। तो आइए जरा अब हम देखते हैं। उम्मे सलमा से रिवायत है कि मैंने एक शायद का मतलब अल्लाह के नबी से पूछा कि ये जन्नत की औरतें इतनी हसीन जो बताई गई, ये क्या इसका मतलब है, यानी झिल्ली की तरफ इशारा है। तो आपने फरमाया कि इनकी नरमी और नजाकत उस झिल्ली जैसी होगी जो अंडे के छिलके और इसके गूदे के दरमियान होती है। सुभान अल्लाह। चलिए ये सारी जो मैंने बाद में बातें बताई हैं इसको वहां आगे सेट कर दीजिएगा, और अब हम देखते हैं अगले वाक्य को। आयत 50 से, फअक्बल बादुहुम अला बादी यतसाअलून, फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल करेंगे। इमेजिन करें जन्नत में गेट टुगेदर है, सब बैठे हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मुतकाबिल हैं। इतने में एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल करेंगे, قال قائل منهم إني كان لي قرين, इनमें से कहने वाला कहेगा मेरा एक साथी हुआ करता था, यानी मेरा दुनिया में एक दोस्त था, फ्रेंड था। يقول إنك لمن المصدقين, वो कहा करता था क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो, यानी उसको बड़ा डाउट था मेरे इस दीन पर। कहता था अच्छा जी अब तुम भी इस बात की तस्दीक करने लग गए, मतलब यह है कि वो मेरे इस्लाम पर और मेरे कुरान पर और मेरे दीन के पढ़ने पढ़ाने पर बड़े एतराज खड़ा करता था। और क्या कहता था, अ इज़ा मितन व कुन्न तुराबन, क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी बन जाएंगे, व इजामन और हड्डियां बनकर रह जाएंगे, अन्नालमदीनून, तो क्या हमें बदला दिया जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, बदले दिए जाए। यानी पहली बात है उसको मेरे अल्लाह के नबी की तस्दीक करने पे एतराज था, दूसरी मरने के बाद दोबारा जीने पर मेरा जो ईमान है इस पे उसका एतराज था। متنا موت سے ترابن مٹی زامن ہڈیاں، یہ جو لفظ ہے نا مدینون، ذرا غور سے دیکھیے یہ کیا لفظ ہے، دیکھنے میں کچھ اور لگتا ہے کچھ اور. مدینون، آپ کہیں گے مدینہ ہے اس میں، نہیں، اس میں مالک یوم الدین ہے. دان یدین دین، وہی لفظ ہے بدلے دیے جانے. مدین اصل میں پھر وہی فاعل اور مفعول کے وزن کی بات آ جاتی ہے، تو گویا کہ میں وہ شخص ہوں جس کو بدلے دیے جائیں گے. قال هل انتم مطلعون، اب جنتی ایک شخص کو باہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور باتیں کرے، پتہ نہیں میرا وہ دوست کدھر گیا، تو کوئی اور کہے گا. اب ہو سکتا ہے کوئی جنت کا دوسرا شخص ہو، یا فرشتہ کہے، یا اللہ کے نوٹ دی بیسٹ، اللہ نوٹ دی بیسٹ، وہ کہیں گے تم دیکھنا چاہتے وہ کدھر ہے تمہارا وہ دوست جو تمہارے دین پہ اعتراض کرتا تھا. قال هل انتم مطلعون، کوئی کہنے والا کہے گا کیا اب تم اسے جھانگ کر دیکھنا چاہو گے، جو تمہیں جو شخص تمہیں گمراہ کرنا چاہتا تھا، جو تم پہ اعتراضات کرتا تھا، تم پہ بہت گڑی نظریں رکھتا تھا، تمہارے ایپ ٹٹولتا تھا، دیکھنا چاہتے ہو کس حال میں. اللہ اکبر، گویا کہ اہل جنت کے لیے وہاں یہ بھی اختمام ہے کہ جس سے ملنا چاہیں مل لیں اور جو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. جیسے آج ہم چینل گھماتے ہیں اور ساری دنیا میں جدھر مرضی گھوم کے ادھر کی خبریں پڑھ کے آ جائیں، تو جنت میں یہ فیسلٹیز موجود ہوں گی. کوئی ایسا چینل سیٹلائٹ ہوگا کہ جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنمی کی تھوڑی سی جھلکی دکھا دی جائے گی. فتلا فراخ فی سوائل جہیم، تو وہ جھانکے گا اور اسے دیکھے گا دوزخ کے بیچ درمیان میں. فتلا، وہی ہے جسے لفظ مطلبی ہے، تلا تلو ہونا، پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، شگوفہ پھل جو بالکل نیا نیا نکلتا ہے، یہ سب لفظ پیچھے گزر چکے ہیں. یعنی طلوع ہونا، سورج بھی نکلتا ہے تو بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے نا، یعنی ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا جھک کے دیکھنا، جھانکنے کا معنی، پیپ بیپ کرتے ہیں شاید انگلش میں، اس کو کیا بولتے ہیں، ٹو پیک یا پیپ، کچھ اس طرح کا لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جھانکے گا. قالت اللہ ان قط لتردین، وہ تو پکار اٹھے گا اللہ کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کر دیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنتی شخص کہہ رہا ہے اس جہنمی کو دیکھ کر. یہ جو قط ہے نا، کادا یقود، اسے تا مونس کی کادا، اور لطور دین کیا ہے؟ لفظ دیکھیے گا اس میں پھر وہی ہے، برباد کرنے والا، لطور دین. آپ اس کا روٹ ڈھونڈے، یہ آپ کا چھوٹا سا اسائنمنٹ ہے. تو مجھے بھی برباد ہی کر دیتا، رد کر دیا جاتا اللہ کے دربار سے. یہ تو اللہ کا فضل ہوا میں نے تمہاری باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دی، وہ آوازیں جو تم اٹھاتے تھے میرے خلاف میں تو مانتا ہی نہیں تھا، جو میرے دل کی آواز تھی میں نے اس کو پکارا، اس پکار کو قبول کیا، تیری بات تو میں نے مانی نہیں. جب میرا دل جم گیا کہ یہ قرآن ٹھیک ہے، دین ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے تیری باتوں کو نہیں جانا. اور اگر میں نے کبھی تیری بات جان لی ہوتی، مان لی ہوتی، تو آج تیرے ساتھ جہنم کے اس کھڑے میں ہوتا. وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی لازمن پکڑے گئے لوگوں میں سے ہوتا. اللہ اکبر. محدرین دوبارہ آ گئے اس صورت میں، اب دیکھ لیں، میرے ذہن میں ہمیشہ اس لفظ کے ساتھ ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا ایک مجرم ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہے اور اس کے سامنے یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. آج یہ دنیا چھٹتی ہی نہیں ہے، واللہ اتنے اہم کام ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کا دا موسٹ امپورٹنٹ کام چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں. قیامت کے دن حسرت ہوگی ایسی دوستیوں پہ، افسوس ہوگا ایسی دوستیوں پہ کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والی ہوں، اور جو بچ کے نکل گیا آپ جیسا اللہ کی توفیق سے، وہ شکر ادا کرے گا کہ ہم نے نہیں کسی ریئیکشن کو دیکھا، ہم تو چلتے ہی گئے چلتے ہی گئے. افما نحن بمیتین، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں؟ اللہ اکبر. افما نحن بمیتین، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے؟ الا موتتنا الا موتتنا الاولى، سوائے ہماری اس پہلی موت کے، یعنی جو میں آ گئی. وما نحن بمعذبین، وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. اب اس کو بھی سمجھیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ انسان جب کسی بہت شوق سے گزرتا ہے نا، شوق، اردو والا شوق نہیں انگلش والا، تو اس کو یقین نہیں آتا کہ وہ وقت ٹل گیا. موت کی اتنی بڑی سختی تھی کہ موت کے اس چکر سے نکلنے کے بعد بھی لوگوں کو خوف ہے کہ کہیں دوبارہ موت تو نہیں آ جائے گی. اور ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، یعنی آخری بندہ بھی اپنے اصل ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا، تو پھر موت کو ایک چت قبرے، کالے اور سفید بھیڑ، دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا کہ موت کو بھی آج موت آ گئی. تو وہاں خوف ہوگا کہ کہیں ہائے پھر موت تو نہیں آئے گی. یہ بالکل ایسی ہے کہ جب کبھی آپ پڑھتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا ایگزامس کے دن تھے, پیپر دے بھی آتے تھے نا تو پھر بھی بھڑبڑا کے اٹھتے تھے, ہائے کل پیپر ہے, پتہ چلتا نہیں سب ہو گیا, آخری پیپر ختم ہو گیا. خوابوں میں بھی امتحانوں کے دنوں میں لوگ پیپر دیکھتے دیتے ہوئے دکھتے ہیں, اور ہمیشہ دل میں آتا بھی یہی ہے کہ جو پیپر میں آیا ہے وہ مجھے آتا نہیں ہے. تو خوف سے نجات پانے کے بعد بھی بندہ ایک دم چونک چونک اٹھتا ہے. اسی قسم کی کچھ باتیں ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ سب باتیں کیسے ہو رہی ہیں, تو آپ کہہ لیجیے یہ پیل ٹاک سے ہو رہی ہیں, یہ واٹس ایپ سے ہو رہی ہیں, یہ وائبر, یہ اسکائپ سے ہو رہی ہیں. آج کے لوگوں کو تو ان آیتوں کو سمجھ کر کچھ بھی کوشچن نہیں کرنا پڑے گا, جبکہ پہلے دور کے لوگ بہت پریشان ہوتے تھے, ایک کہاں بیٹھا جنتوں میں اوپر اور ایک زمین کی گہرائیوں میں, دونوں کو کیسے ایک طرح سے یہ پتہ چلے گا. تو آج اللہ کی ذات نے یہ سب بتا کے ہمیں کھول کے بتا دیا کہ جنتیوں کی گفتگو ہے. ان کو بھی خوف ہے کہ اب ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی, کیا مزید پھر کوئی چھانٹی تو نہیں ہوگی, کوئی اور چھلنی تو نہیں لگی ہوئی جس میں سے چھن کر پھر ہم بھی اس دوزخ میں پہنچ جائیں. کیا اب ہم مطمئن ہو جائیں کہ اب ہم جنت میں آ گئے ہیں تو یہاں سے نہیں نکلیں گے؟ دیکھیے ایمان والا زندگی بھر مطمئن نہیں ہوتا. قرآن پکڑ لیا تو اب یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے, نہیں, ایک ہلکی سی آندھی آئے گی ایسے اڑیں گے کہ پھر لگے گا کبھی پڑا ہی نہیں تھا. ایک دن عادت بگڑ جائے دوسرے دن آنا ہی مشکل لگتا ہے. تو جنتیوں کو دھڑکے ہوں گے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ کتنے سادہ لوگ ہوں گے, تواضع انکساری. اور جنت میں جانے پر نہ تو وہ فخر اور تکبر کا اظہار کریں گے, نہ بڑکے ماریں گے, دیکھا نا آگے جنت میں کتنے نیک تھے, تم چلی گئی نا آگ میں, ہاں وہ تمہیں دانے دینے شروع ہو جائیں گے, اچھا رہا جہنم میں گئی. نہیں, کوئی ہل نہیں ہے. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جہنم میں اس کو دیکھ کر کوئی دکھ ہو رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ یہ رحم کے جذبے نکال دے گا, لیکن دیکھیں گے. اور پھر بھی آپ نے نوٹ کیا کہ دوست کو دیکھ کر اپنی فکر ہی لگی رہی ہے کہ شکر ہے تمہاری باتوں میں نہیں آ گئی, تم ایسی تھی ویسی تھی, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی ادھر. یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کیجئے. ایک دفعہ آپ جنت میں چلے گئے نا, پھر آپ کو یہ غم نہیں رہے گا کہ کون جنت میں گیا کون جہنم میں گیا. یہ خوشی ہوگی کہ ہم بچ گئے, ہم نے اپنی محنتوں کا پھل پا لیا, اور یہ اللہ کا فضل ہے. ان ھذا لھو الفوز العظیم, یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, ایسی ہی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو. یہ ہے وہ گول جس کو گول بنا کر اس کے پیچھے گھومو, یہ ہے تمہاری زندگی کا مشن, اس کو کھیلو, یہی ہے وہ ہدف, اس کے لیے بھاگو دوڑو محنت کرو. سب کرتے ہیں بھاگ دوڑ مگر کون کس کے لیے. لمثل ھذا کی جگہ لکھئے کون لوگ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کون دنیا کے مال کے لیے, کون حسن کے لیے, دولت کے لیے, شاپنگ کے لیے, گھر سجانے کے لیے, کھانے پکانے کے لیے, ہر ایک بھاگ رہا ہے. اور جس کا جو گول ہوتا ہے نا وہ اسی کو حاصل کرنے کے لیے سارا دن بھاگتا ہے, خون پسینہ ایک کرتا ہے, اور رات کو آ کے تھک ہار کے بستر پہ پڑ جاتا ہے. پھر انجوائے کرنے کا موقع نہیں ہوتا, کہتے جو پڑا فریج میں وہی کھا لو, میں اور نہیں بنا رہی. غور کریں تو چار دن کا یہ ایش اور آرام حاصل کر لیا, کوئی بڑی کامیابی نہیں. آج مرے کل دوسرا دن. اس قسم کا عارضی ہدف بنانے اور اس کو حاصل کرنے والوں کو کیا میڈل ملیں گے؟ موت کے ساتھ سب ختم. اللہ کہتا ہے خون بہاؤ, پسینہ بہاؤ, وقت لگاؤ, مال لگاؤ. یہ بہت قیمتی ہے تمہارا وقت, خون, پسینہ, اس کو اتنی سستی چیزوں کے لیے کیوں ضائع کرتے ہو؟ ایسی قیمتی پونجی کو تو کسی بڑے کام میں لگا دو. اور وہ بڑا ہدف ہے لمثلی ھذا, اسی کی طرح وہ جنت ہے, اس کی نعمتوں کا حصول ہے. تمام بھاگ دوڑ کرنے والے اسی کو طرف جائیں. تیسویں پارے میں ایک جگہ آتا ہے فی ذالک فل یتنافس المتنافسون, بفی ذالک فل یتنافس, بس اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ بھاگے. تنافس نفس ہے, نفس کو لگا دو, ذات کو لگا دو, اس جنت کو پانے کے لیے اس کی کوششیں کرو. دنیا تو راہ میں آ جائے گی, پاؤں کی جوتی بن کے دنیا تمہارے پاؤں میں پڑے گی. لوگ جس چیز کی تمنا کر بھی نہیں سکتے, تمہیں اللہ تعالیٰ وہ ایسے ہاتھ میں لا کے پکڑا دے گا نعمت. ایک دفعہ اللہ پہ ٹرسٹ تو کر کے دیکھو. آپ اور میں اپنے آپ پہ لیں. اب یہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی یہاں, پھر آگے ٹاپک پلٹ رہے نا, تو محاسبہ کر لیں میں بھی اور آپ بھی. سب سے زیادہ تو ہمیں اپنی فکر ہے, دوسروں کی تھوڑی ہے. کیا ہم اپنی دوستوں اور اپنے پیاروں کے اس برے انجام کے منتظر ہیں؟ कि वो जहन्नुम में पड़े हों और हम ऊपर दे के खुशियां मना रहे हों? हरगिज़ नहीं। मोमिन इतना तड़पता है, इतना दुखी होता है, जो उसकी दावत पे आ जाता है उससे ज्यादा उसका गम उसको लगा होता है कि जो नहीं आता। आने वालों की खुशी कम, ना आने वालों का गम ज्यादा। अब देखिए, एक माँ होती है ना, 10 बच्चे, अगर चले 10 नहीं होते, 6 बच्चे लगा ले, 4 बच्चे आ जाएं उसके पास किसी मौके पे, ईद पे, खुशी पे, एक या दो ना आए, हर वक्त उनकी बातें करेगी, और जो आते हैं फिर वो रोएंगे, हाँ जी हमारे आने की तो आपको खुशी नहीं, वो दूर बैठ के भी आपको बड़ी याद है। यही तड़प एक मोमिन के दिल में अपने प्यारों की होनी चाहिए। मैं सोचती हूँ अभी ये आखिरी 7-8 पारे हैं, अगर इसकी हम तड़प ले लें और इसमें अपने प्यारों को जमा कर लें, क्या बड़ी बात है। और कुछ नहीं, घरों से बैठ के तो सुन लें, चले जो उनके नसीब में उतना तो ले लें। क्या मसरूफियात है, क्या करने वाला इंसान कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें दूसरों की हिदायत का जरिया बना दे, और इसके लिए इखलास, तड़प, सच्ची मोहब्बत दिल में लाए। ताने नहीं, इल्जामात नहीं, दूसरों को शर्मिंदा करना नहीं। कभी किसी को कहीं मिले ना तो शर्मिंदा ना करें। मेरी आदत है, कभी कोई मुझे साल बाद मिले, 6 माह बाद मिले, हफ्ते बाद मिले, मैं नहीं पूछूंगी आप किधर थी। क्यों भाई, मुझे क्या हक है? बाज लोग सिर्फ इन जुमलों की वजह से फिर पीछे हटते हैं, हालांकि कोई कुछ भी ना कहे अपने दिल में ही बड़ा गिल्ट होता है, हम इसलिए नहीं अब जाते, जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो भाई कोई पूछे ना पूछे, आपको मुझे क्या फर्क पड़ेगा? जरूरत है इस बात की कि इंसान आज कोशिश कर ले, तड़पे, दुआएं मांगे, असबाब जमा करें, आला अखलाक रखें, और फिर दुआ करें। पीछे भी नहीं पड़ना, किसी को नाक में दम भी नहीं करना, क्योंकि लोगों को आप दुनिया की नेमतें दें, वो खुश होंगे, कहेंगे आप कितनी अच्छी हैं, हर मौके पे मुझे याद रखती हैं, और आप दीन की दावत दें, वो कहेंगे जान छोड़ दो, आप कह जो दिया हमने नहीं आना, तो बार बार हमें तंग क्यों करते हो? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इसलाह का मौका दे। अब जन्नतियों की मालूम बातें हमने सुन ली, अब अगली आयत में फिर जहन्नुम का कुछ जिक्र है, और ये सारी बातें पढ़ते सुनते वक्त हकीकत में इंसान के दिल में ऐसे लगता है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इधर भी उधर भी सब कुछ, ये अल्लाह ताला ने सब कुछ पेश कर दिया। अब अगले आयतों को भी सुनते वक्त अपने आप को सामने रखें। हमारा आला जन्नतियों की बातें हम कहते हैं हम, और जहन्नुमियों की बातें हम कहते हैं तुम, बस मैं तो जन्नत में जाऊंगी, तुम्हारा मुझे कुछ नहीं पता। तो हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए, फिर इसके साथ जाएंगे। एक वाक्या सुन लीजिए जो इस आयतों पे आता है। जाहिर है अभी हालात तो बिल्कुल सिंपल हमने समझ ही लिए हैं ना, कोई भी हो सकता है, ये किसकी हालात हैं, किसकी बातें हैं, लेकिन कहते हैं कि ये वाकई हकीकत में कोई एक शख्स था। मैं पढ़ के एक जगह सुना देती हूँ आपको, आपको मिल जाएगा ये वाकया तफसीर में। मेरी नज़र में वाकयात में लोगों से मिलना मिलाना, बात करना, उससे ज़्यादा दूसरी बात अहम होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोगों को तसल्ली होती है कि ऐसा करें। तो खुलासा क्या है इस पूरे वाक़े का, अलामा सय्यूती लिखते हैं कि इन आयात में एक वाक्य है, खुलासा ये कि दो आदमी कारोबार में शरीक थे, इनको 8,000 दीनार की आमदनी हुई, दोनों ने 4,000 दीनार आपस में बांट लिए। एक शरीक ने अपनी रकम में से 1,000 दीनार खर्च करके जमीन खरीदी। दूसरा साथी बहुत नेक था, इसने ये दुआ की कि या अल्लाह, फलां शख्स ने 1,000 दीनार में एक जमीन खरीदी है, मैं आपसे इस 1,000 दीनार के इवज जन्नत में जमीन खरीदता हूँ, और वो सदके में दे दिया। फिर इसके साथी ने 1,000 दीनार खर्च करके घर बनवाया, तो इसने कहा या अल्लाह, 1,000 दीनार में इसने घर तामीर किया, मैं जन्नत में घर बनाता हूँ, फिर 1,000 और सदके में दे दिया। इसके बाद इसके साथी ने कहा कि मैंने तो एक औरत से शादी की और 1,000 दीनार खर्च किए, यानी एक साथी अपना सारा खर्च दुनिया में लगा रहा है। इसने कहा अच्छा अल्लाह, उसने औरत से शादी कर ली, मैं जन्नत की औरतों में से किसी को पैगाम देता हूँ और 1,000 दीनार उसकी नजर करता हूँ, वो भी सदका कर दिया। फिर इसके एक साथी ने 1,000 दीनार में कुछ गुलाम और घर का सामान खरीद लिया। इसने 1,000 सदका देकर जन्नत में अल्लाह से गुलाम और सामान तलब किए। इसके बाद इत्तफाक से इस मोमिन बंदे को कुछ शदीद हाजत पेश है, यानी ये सारा सदका कर चुका है, वो दुनिया में लगा रहा है, इसको जरूरत पेश आ गई। ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पुराने शरीक के पास जाऊं, शायद वो नेकी का इरादा करे। चुनाचे अपने साथी से अपनी जरूरत का जिक्र किया। साथी ने पूछा तुम्हारे माल का क्या हुआ? इसने जवाब में पूरा किस्सा सुना दिया कि मैंने तो सदका दे दिया। इस पर इसने हैरान होकर कहा क्या वाकई तुम इस बात को सच्चा समझते हो कि जब मरकर खाक हो जाएंगे तो हमें दूसरी जिंदगी मिलेगी? वहाँ हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा। जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इसके बाद दोनों का इंतकाल हो गया। तो इन आयात में जन्नती से मुराद वो बंदा है जिसने आखरत की खातिर अपना सारा माल सदका कर दिया, और इसका जहन्नमी मुलाकाती वही शरीक कारोबार है जिसने आखरत की तस्दीक करने पर मजाक उड़ाया। ये तफसीर दुर्र मंसूर अरबी की और इबन जरीर की रिवायत से वाक्य मौजूद है। तो आप जरा इसको, क्या इस वाक्य की आड़ में हमें अपना आप नहीं दिख रहा? क्या हम तो नहीं इस तरह के? अल्लाह ताला हमें माफ करे और बचा के रखे। हमारी दुनिया, सारी दुनिया 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 बनती नहीं, पूरी नहीं पड़ती। अभी तो वो, अभी तो कई अरमान दिल में है, हम कैसे ये सब कुछ छोड़ सकते हैं? तो यहां से एक साइड का इशू भी नोट कीजिए, बुरी सोहबत से बचना चाहिए। आप वही हैं जो आपके दोस्त हैं, और बहुत सारे लोग क़यामत के दिन अपने दोस्तों को कोस रहे होंगे। दोस्तों में सब आते हैं ना, आपकी मेरी दोस्तें, मेरे वो रिश्तेदार, वो साथी प्यारे, कारोबारी साथी, कुलीग्स, जो जिस दर्जे पे किसी को नेकी से रोक ले, उसको समझ लीजिए कि ये सब कुछ है। अल्लाह ताला हमें बुरे अंजाम से बचाए। अब हम अगली आयतों में से थोड़ा सा जहन्नमियों का हाल पढ़ेंगे, और अभी से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हमें उनमें ना करना। जन्नत का तस्करा फरमाने के बाद अल्लाह ताला पूछते हैं आयत 62 में, अज़ालिका खैरुन नुज़ुला, भला मेहमानी के तौर पर क्या ये बेहतर है? नुज़ुल कहते हैं वो पहला खाना जो मेहमान को पेश किया जाए, और यकीनन वो अच्छा होता है। नज़ील कहते हैं नए नए आए हुए मेहमान को। अल्लाह ताला पूछते हैं, बताओ ये जन्नत की मेहमानियाँ अच्छी हैं या आम शजरतु ज़क्कूम, या ज़क्कूम का दरख्त भला है भाई? कौन सी नेमतें अच्छी हैं? जन्नत के ये फल खाने फवाक के अच्छे हैं, या फिर थोर, जहन्नमियों को जहन्नम में जाते ही जो खाना दिया जाएगा ना, वो ज़क्कूम का खाना होगा। थोर कड़वा होता है, उसका दूध भी कहीं लग जाए तो उधर दाने बन जाते हैं, इंतहाई जहरीला और कड़वा मादा होता है। और इब्तदाई मेहमान नवाजी की ये नौयत है तो ज़रा सोचे इसके बाद फिर उनका क्या बुरा हाल होगा। कंजूस से कंजूस शख्स भी मेहमान के आते ही कुछ ना कुछ तो आगे रख ही देता है, फिर बाद में जो उसके साथ करे। हाँ, क्या यहाँ भी यही बात नहीं दिख रही कि आते तो जकूम है, इसके बाद जो है उसका तो अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो सवाल उठा के बता दिए, इख्तियार तुम्हारे हाथ में, चाहो तो जन्नत के हमेशा की नेमतों को हासिल करना, इसको अपना हदफ बना लो, या जहन्नुम और उसके फिर खौफनाक अजाबों के साथ अपनी आकबत को वाबस्ता कर लो। है क्या ये जक्कूम? इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, इन नजालना फितनतन लिज़्ज़ालिमीन, हमने इस दरख्त को फितना बना दिया है जालिमों के लिए। आजमाइश कैसे बना था, अभी एक वाक्य से आपको पता लगेगा। जालिमीन से नीचे लिख लें अबू जाहल और उसके साथी, और जो आज के दौर में जो भी इस पे शक करे कि जहन्नुम में इस तरह की कड़वी चीजें होंगी। क्या होगा ये जक्कूम? इन नहा शजरतुन तखरुजु मिफी असलिल जहीम, वो तो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह में से निकलेगा। जहन्नुम की तह में से निकलेगा ये दरख्त, तखरुजु, और आपको पता है कि दरख्त हमेशा जमीन पे उगते हैं ना, तो दरख्त हवा में तो नहीं उगेंगे ना, तो मुराद है कि गहरी जहन्नुम में होगा। यही बात कि काफरों के लिए आजमाइश है, सूरत बनी इसराइल की आयत 60 में भी इसका जिक्र हुआ है। आजमाइश क्या थी इसको पहले देख लें, फिर आगे चलते हैं। ये सोच थी कि जहन्नुम की आग के अंदर आखिर दरख्त कैसे उगेंगे, और ऐसी सोच दरअसल सिर्फ उन लोगों को परेशान करती है जो आखरत के मामले को इस दुनिया के मामलों पर कियास करते हैं। तो ऐसे लोगों को पता लग जाए कि क़यामत के दिन एक ऐसा आलम सामने आने वाला है जिसके कवानीन इस दुनिया के कवानीन से मुख्तलिफ होंगे। बस आज देखिए, इस दुनिया में इंसान जब आग में जाता है, जल के मर के ख़त्म हो जाता है ना, मगर जहन्नुम की आग जलाएगी भी और मरने भी नहीं देगी। पढ़ लीजिए सूरत आला की आयत नंबर 13, के ला यमूतू नफीहा वला यहया, ना वो जिंदा रखेगी ना मारेगी, यानी जिंदगी जिंदगी नहीं और मौत मौत नहीं है। फिर इसी तरह देखिए, इस दुनिया में अल्लाह का कानून है कि स्किन एक दफा जल जाए आग से तो ठीक नहीं होती। जहन्नमियों की जिल्दें जल जल के कपड़ों की तरह बार बार बदली जाएंगी। सूरत निसा 56 में पढ़ चुके हैं आप लोग, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरा, जब उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालों में बदल देंगे। तो लिहाजा ये कोई शक ना करे कि जहन्नुम में आग कैसे, दरख्त कैसे होंगे। और उसकी डिस्क्रिप्शन, तल उहा का नहरू सुशयातीन, इसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शयातीन के सर। अब ये कैसे खोशे हैं, जसामत में कैसे हैं, मुराजे के बहुत बड़े बड़े होंगे, भद्दे बदनुमा। यहां देखिए ये मुहावरा है, ये लिख लीजिए, का नहरू सुशयातीन, ये मुहावरा है। जैसे उर्दू में हम बोलते हैं ना फलां किसी की बात करें ना, बस उड़ती कहते हैं वो तो बिल्कुल भूत है, वो तो चुड़ैल लगती है। अब मुझे बताइए कि क्या हमने भूत देखा कभी, और अल्लाह ना दिखाए कुछ चीज़ें देखें क्या आप इंशाल्लाह मैजिक सेमिनार में जो संडे को हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे कि हैरत गुम हो जाएगी, कैसे लोग जादू करते हैं। आपको वहाँ वीडियोस भी दिखाएंगे, कुछ क्लिप्स सुनाएंगे, और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी कि जो इससे गुजर चुके। मैं इसकी तैयारी कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि जादू इतना करी होता है, और उसको देखने के बाद तो हर बंदे को अपने किसी ना किसी मसले का की वजह समझ आती है कि अच्छा जादू नहीं लेकिन किसी ना किसी शैतानी असर में तो मैं हूँ जो मैं इस तरह डिप्रेस्ड हूँ। तो इंसान डिप्रेस नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, याद रखिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो वो डिप्रेस्ड नहीं होते, पोजेस्ड होते हैं। लिख लें ये जुमला अगर दिल चाहे तो, डिप्रेस्ड लोग पोजेस्ड होते हैं, किसी ने उनको पोजेस किया होता है, चाहे वो अपने अंदर का नफ्स हो, अपना शैतान हो, या बाहर का शैतान हो। तो ऐसे लोगों को ऐसे वक्तों में फिर उस आता है। तो बहरहाल यहां शैतान के सरों की बात करके क्या बता दिया कि शैतान इंसान को यानी दिखता तो नहीं है लेकिन है बदसूरत। हमारे जहन में शैतान की एक भद्दी सी शक्ल तो है ना, तो गोया के। और वैसे भी कभी आप रात को दरख्त देखे ना बड़े बड़े अंधेरे में, तो ऐसे ही लगते हैं जैसे खड़े हुए बड़े बड़े जिन्न है। फइन नहुम ला खिलू न मिनहा, फिर वो इसमें से खाएंगे, इतने भद्दे इतने बदनुमा दरख्तों में से खाएंगे। फमाली ऊ न मिन हल बुतून, और इसी से अपने पेटों को भरेंगे, फिर इसी से अपने पेटों को भरेंगे। अल्लाह अकबर। वैसे दरख्त तो वैसा है कि उसे कोई देखना पसंद ना करे, लेकिन अहले जहन्नम भूख की शिद्दत से मजबूर होकर इस दरख्त को खाएंगे और इसी से अपने पेटों को भरेंगे। देखिए कोई खाना आप देखें और दिल ना करे खाने को, हम तो एकदम नाक चढ़ाते हैं ना, ढक्कन खोल के ना, मैं नहीं खाती ये, किसी और को दे दे। जहन्नमी देखेंगे गंदा बदबूदार खाना, जकूम, और भी बहुत कुछ आगे हम पढ़ते जाएंगे अब तो अगले पारों में। कहीं जरी कांटों वाला, कहीं जहन्नमियों के जिस्म की पीप, जख्मों का धोवन, लेकिन फिर भी खाएंगे। ये एक और अजाब होगा जहन्नम का। एक रिवायत में मैंने पढ़ा था कि जहन्नम का आधा अजाब सिर्फ खाने से मुतल्लिक है। और खा लिया गंदा, थुम्मा इन्ना लहुम अलैहा लशौबम मिन हमीम, फिर इसके ऊपर इनके लिए गर्म पानी का आमेजा होगा। यानी जकूम के जब पत्ते और उनके कांटे खाए तो प्यास भड़केगी, पानी मांगेंगे तो पीप मिला हुआ खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। शौबन मिलूनी कहते हैं ना, कभी पुराने जमाने में लोग बर्तनों के ऊपर कलई करवाते थे, यानी ऊपर उनके एक लेप कर दिया जाएगा। बस इतना नहीं, सुम इन नमर जिया हुम ल इलल जहीम, फिर इनका लौट कराना है जहन्नुम की तरफ। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी ये जो जकूम का खाना और खौलता हुआ मशरूब है ना, इन लोगों को इब्तदाई मेहमान नवाजी के तौर पे मिला था, इसके बाद अब इन्हें मुस्तकिल ठिकाने यानी जहन्नुम की तरफ जाना पड़ेगा। अल्लाह हमें बचा के रखे। सवाल पैदा होता है आखिर इनका जुर्म क्या था, तो सुन लेते हैं। इन्नहुम अल्फवाबा अहुम दौलीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अबा अजदाद को गुमराह पाया, खानदानी भटके हुए थे। इनके बाप दादा जिस तरीके को दीन कहते थे ये भी उसी पे थे, ये हटना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने क्या किया, फहुम अला आसारिहिम युहराउन, तो वो तो इनके ही नक्शे कदम पर दौड़े चले जा रहे हैं। यानी बाप दादा गुमराह थे लेकिन इन्होंने भी अकल नहीं इस्तेमाल की, आसार असर से, और युहराउन हरा आइन से, हरा दौड़ना भागना, बगैर सोचे समझे किसी रास्ते पे चल पड़ना। गुमराह लोगों के पीछे आंखें बंद करके चले, ब्लाइंड फेथ। अल्लाह ताला कहते हैं वलकद दल्ल क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, और इनसे पहले लोगों की भी अक्सरियत गुमराह थी, माजी में भी अक्सरियत गुमराह थी। सूरत अल अनाम की आयत 116 में भी अल्लाह ताला की ये बात हम पढ़ चुके हैं, वइन तुती अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लूक अन सबीलिल्लाह, अगर तुम पैरवी करोगे जमीन में बसने वालों की अक्सरियत की तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से लाजमन गुमराह करेंगे। हम कहते हैं अक्सरियत मेजॉरिटी, किधर जा रहे हैं लोग ज्यादा, मेजॉरिटी तो सिनेमा घर ही जाती है फिर हम भी चल पड़ेंगे, मेजॉरिटी तो बाजारों में रहती है हम भी जाएंगे क्या। अल्लाह अकबर। सूरत यूसुफ आयत 106 में भी यही बात पढ़ चुके, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और इनमें अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर किसी न किसी किस्म का शिर्क भी करते हैं। तो गोया कि ये वो बुतों के आगे झुकने वाले बाप दादा नहीं थे, ये रस्मों रिवाजों के आगे और खानदानी बड़ाई के सहर में और मनपसंद लाइफ स्टाइल के शिर्क में मुबतला लोग थे। हर दौर की अक्सरियत किसी न किसी शिर्क में मुलव्वस रही। तौहीद के साथ शिर्क की मिलावट की इब्तदा हमेशा ऐसी ही होती है कि अल्लाह को तो एक बड़े माबूद के तौर पर मान लिया जाता है, एक साइड पे कर दिया, मस्जिद में, नमाज में, हज में, उमरे में, बस दैट्स इट। इसके साथ फिर छोटे छोटे माबूद बनाए होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा माबूद पीछे जाता जाता है और इंसान बड़ा आता है। वो कहना चाहिए ना कि इंसान की सोच से दूर से दूर से दूर और पर्दा गैब में अल्लाह को छुपा कर फिर छोटे खुद साख्ता लोगों को, क्योंकि महसूस कर सकते हैं ना, फिर उनको उनसे डरते हैं लोग, मुआशरा, खानदान, बुजुर्ग, मजहबी रहनुमा और इस तरह के लोग। और एक वक्त आता है कि ये लोग इतने असाब पे सवार हो जाते हैं, हम इनको नाराज नहीं कर सकते, खानदान इनको नहीं मैं नाराज कर सकती, मेरे बच्चों के रिश्ते कैसे होंगे। देखिए रिश्ते होने हैं ना बच्चों के, तो वो ऐसे भी हो जाएंगे। मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि लोग बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान रहते हैं। मैं आपको नहीं कह रही कि अब आप इस वजह से लोगों को बुला लें तो कि इधर आ जाएं कि आपके रिश्ते हो जाएंगे। पिछले कई साल से ये चीज़ मैं देखती आई हूँ। यकीन करें ये अल्लाह के हुक्म की बात है, कोई इसमें टोटका नहीं है, ना आप इस बुनियाद पे किसी को दावत दें कि आप कुरान पढ़ने आ जाएं आपके रिश्ते हो जाएंगे, लेकिन देखने में यही आया। घर बैठी बच्चियां बैठी रहती हैं और अल्लाह अपने किताब की बरकत की वजह से मैं कह सकती हूँ, और जितना उनके अंदर ईमान बढ़ता जाएगा अल्लाह की रहमतें बढ़ती जाती हैं। जिस चीज़ को छोड़ते हैं ना अल्लाह के लिए, अल्लाह वही आपके सामने ले आता है, आजमा के देख लें। अल्लाह अकबर, बात बड़ी पर्सनल है लेकिन ऐसी मुंह पे आ गई। मेरी खुद अपनी शादी, यानी जो मेरी सास है उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम एक मदरसे में देखा था, ना हम जानते ना मानते, किसी तरह से आपस में हमारी कोई खानदानी नस्बत नहीं थी, एक बस सबब बना। और मैं अक्सर सोचती हूँ अब भी कि अगर मैं उस मदरसे में ना जा रही होती, मैं वहां ना पढ़ती, तो शायद मुझे इतना अच्छा साथी ना मिलता। तो आप अल्लाह से लेंगे ना तो अल्लाह को कुछ देना पड़ता है, पहले अपना आप साबित तो करके देखें, फिर अल्लाह ताला आपकी कितनी कदर करता है। तो ऐसे लोग फिर वहां हसरतों का शिकार होंगे जिन्होंने दुनिया बनाने की कोशिशों में दुनिया क्या बनाई। देखिए आप खुद अपना काम करें या आपके बड़े कोई आपका काम करें, कौन अच्छा करता है? बड़े लोग अच्छा काम करते हैं ना। हमारे छोटे छोटे हाथ, हमारी छोटी छोटी सोच है, फिर धोखे होते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या हमारे सामने आता है, डरते ही रहते हैं दिल में, क्योंकि जहां अल्लाह का खौफ नहीं, जहां दीन नहीं वाला का खौफ नहीं होगा, तो फिर ऐसी शिर्क आने लगते हैं कि उनको फिर यही बड़ों की फिक्र लगी रहती है। ये वो लोग हैं कि जो हकीकत में फिर पीछे हो जाते हैं। जरूरत इसी तरह की बातों को, आप देखिए कि ये जितने बातें अदियान है ना आज के दौर में, इसी जुमले पर जरा गौर करें, वलकद दल्ला कबला अक्सर उलवलीन, कितनों को भटका दिया। आप सोचते हैं लोग दीन से दूर रह के भटकते हैं, कुछ लोगों को दीनदार भी भटका देते हैं। ऐसी ऐसी आज टर्मिनोलॉजीज हैं, नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन लोगों ने इस तरह के फलसफे घड़े में अपने दीनी रहनुमाओं के नाम पे कि अल्लाह माफ करे कि उनकी तस्वीर में हमें खुदा का अक्स मिल जाता है, और वो कहते हैं कि बस हम फलसफे के नाम पे और मुतकल्लिमीन के नाम पे। आप देखें उन्होंने ऐसी ऐसी घन चक्कर चीजें पेश की लोगों को कि वो कहते हैं नहीं अल्लाह कोई नहीं, ये सब बुजुर्ग चल रहे हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने इस जमीन को थामा हुआ है। तो लगे थे कई भटके, आज भी तुम भट जाओगे तो कौन सी बड़ी बात होगी? क्या हम भटकने वालों को ऐसे छोड़ देते हैं? नहीं, वलकद अरसलना फीहिम मुनज़िरीन, और हमने इनमें खबरदार करने वाले भी भेजे थे। ये है अल्लाह की मोहब्बत, ये है अलहादी। जब देखता लोग भटक रहे हैं, कुछ अरसे बाद किसी को मुनजिर बनाकर भेज देता है। पहले दौर में वो नबी होते थे, आज के दौर में वो दाइये दीन होते हैं। अल्लाह किसी को भेजता है कि जाओ इनका हाथ थाम के लाओ, इनको एक चांस दो, इनको एक मौका दो, ये अपनी टेंशनों से निकले, घबराहटों से निकले, दुनियादारियों से निकले, क्या बिगड़ी हुई चीज को दोबारा सही करके फिर बिगाड़ने की कोशिशों में लगे रहते हैं। जाओ इनको बुलाओ। जो लब्बैक कह देते हैं उनका इंजाम पहले पढ़ लिया, और जो नहीं कहते फंजुर कैफा कान आकिबतुल मुनज़रीन, तो फिर देख लो कैसा इंजाम हुआ इन लोगों का जिन्हें खबरदार किया गया था। ये है वो बिगड़े हुए लोग जिनको अल्लाह ने कैसे फिर थामा था। कौमे नूह, कौमे हूद, सवाले शुएब, लूत और आले फिरौन की तफसीलात आ रही हैं आगे, किस तरह इन्होंने छुटलाया। कौन बचा ऐसे वक्तों में, इन फितनों के वक्त वे कौन पलटा, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय खालिस बंदों के जिनको अल्लाह ने चुन लिया था। वो बंदे हैं अल्लाह के चुने हुए, बस बाकी तो एक बेगार की कार है। देखिए, बात शुरू हुई थी मुखलस से और बात यहां पे आके रुकी मुखलस पे। असल बात यह है कि इंसान मुखलस बन जाए। आप यहां से ये भी नोट करें कि अल्लाह ताला ने सबकी हिदायत के जराए तो रखे हैं, लेकिन फायदा मुखलस उठाते हैं। अंबिया कराम के आने से लेकर बाकियों तक कोई भी किसी को पीछे नहीं कर सका। ये अल्लाह की शान रहमत होती है। जब अल्लाह ताला किसी को चुनता है ना, तो फिर उसके लिए बात आसान हो जाती है। तो हम सब फिर अपने लिए क्या चाहेंगे कि अल्लाह तो हमारी हिदायत का भी जरिया बना दे। चंद लफ्ज जो अभी पीछे गुजरे हैं मुश्किल, उनको नोट कर लीजिए। जक्कूम का लफ्ज जो गुजरा है ना, तो जक्कूम से निकला है। इसका मानी होता है बदबूदार और करीह चीज को निगलना। कड़वा भी होता है, बदबूदार भी होता है और करी होता है। बास कहते हैं कि ये दुनिया के दरख्तों में से है और अरबों में मुतारिफ है। ये कतरब दरख्त है जो तहामा में पाया जाता है। बास कहते हैं ये कोई दुनिया का दरख्त नहीं है, अहले दुनिया के लिए गैर मारूफ है। लेकिन पहली बात ठीक है कि ये है दुनिया में और अल्लाह ने उसी को दिखाया। और उर्दू में इसी को हम सीर या थोर का दरख्त भी कहते हैं। फिर एक सवाल उठता है कि अल्लाह ने इसको इनके लिए फितना या आजमाइश क्यों बनाया, कि पहली बात है कि इसका फल खाना बजाय खुद एक बड़ी आजमाइश है। बास कहते हैं कि इसे इस एतबार से आजमाइश कहा गया कि इसके वजूद का उन्होंने इनकार किया कि जहन्नम में हर तरफ आग ही आग होगी, तो वहां दरख्त किस तरह मौजूद रह सकते हैं। तो जालिमीन से फिर मुराद अहले जहन्नम है, और जहन्नम की गहराई में होगा और इसकी शाखें हर तरफ फैली होंगी। अबू जहल ने जब ये आयतें सुनी थी ना, पीछे भी जब बात हुई इस बनी इसराइल की, तो वो मक्खन लेकर आया और खजूर लगा के अपने दोस्तों को देकर कहने लगा, खाओ, यही जक्कूम है जिसके बारे में मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कितना गर्म होगा। सूरत मोहम्मद की आयत 15 में आता है कि जब उनको पानी की तलब होगी तो खौलता हुआ पानी इनको दिया जाएगा, जिसके पीने से इनकी अंतड़ियां कट जाएंगी। अम्आहुम, अल्लाह हमें ऐसी कड़वी और ऐसी खराब चीजों से बचाए। और ये जो बाप दादा की तकलीफ में लफ्ज आया ना, जहराउन, तो इहराउन से है, इसराउन के मानी में। सूरत होती है ना जल्दी, स्विफ्ट, वही इहरा इसरा है। क्या? दौड़ना और निहायत शौक से और लपक कर पकड़ना और इख्तियार करना। ऐसे लोग जो हैं वो फिर बगैर सोचे समझे इन रास्तों पे चल पड़ते हैं जिस पे इनसे पहले के लोग चल रहे होते हैं। थोड़ा सा सोचिए कि आखिर वो इंसान ही तो होंगे ना। अपने पर ले, अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो गया तो चलना मिन हम। और आप देखिए कि दुनिया में भी तो ऐसे सांप बिच्छू होते हैं ना, लेकिन जहन्नमियों के सांप बिच्छुओं का जिक्र जो आता है वो बहुत शदीद है। उसका डंक जो है वो लोगों को कितने हाथ जमीन के अंदर धंसा देगा। तो ये बातें तुम अपनी छोटी सी अकल के साथ कहते हैं ना। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। सोचिए, और यहाँ पे हमारा ये सबक पूरा होता है। आगे वाला वैसे तो हजरत नूह का किस्सा इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको अगले लेसन के साथ लेंगे, ताकि एक ही स्ट्रेच में सब नबियों का जिक्र पड़े। अपना मुहासबा करें, शेयरिंग करें, और इंशाल्लाह इसके बाद ब्रेक है और नमाज, और उसके बाद फिर हम अगला हिस्सा शुरू करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।